मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप देहं श्रीगुरुश्रीं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप में से कोई पिछली क्लास में थे जब ये वाली क्लास लास्ट टाइम हुई थी? है कि शायद हम शिल्पोपाध्याय भारत में आ गए थे 1968 में, वहां तक हमने किया था, बट उसके थोड़ा पहले से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ छूट गए थे जो उस क्लास में डिस्कस नहीं किया था। जैसे एक पास्ट टाइम तो था जब जगन्नाथ जी के विग्रह को बनाने की बात आई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो श्याम सुंदर प्रभु जो कि सैम उनका नाम था, उस समय दीक्षा नहीं हुआ था, मालती माता जी का दीक्षा हुआ था बट श्याम सुंदर प्रभु का दीक्षा नहीं हुआ था, तो उनको उस समय सिगरेट पीने की इच्छा थी, सिगरेट पीने की आदत थी, वो आदत छूटी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको जगन्नाथ जी के छोटे विग्रह दिखाए और उनसे बोला कि आप जगन्नाथ जी के बड़े विग्रह बनाना। तो एक बार वो विग्रह बना रहे थे, जगन्नाथ जी के लिए विग्रह बनाते थे वो, और एक बार प्रभुपाद उनको देखने के लिए आए, तो उन्होंने देख प्रभुपाद ने देखा कि बलदेव के ऊपर, सिर के ऊपर, बलराम जी के सिर के ऊपर इन्होंने सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। तो ये तो बहुत अनहर्ड चीज है, पाप भी है, क्योंकि भगवान के ऊपर रखना अपने आप में बहुत अपराध है। परंतु ये तो उसमें भक्ति में नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत भक्ति में थे बट इतना कुछ नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी उनसे नाराज नहीं हुए, प्रभुपाद जी ने केवल उनसे ये बोला कि आपके और भगवान के बीच में आप इस सिगरेट को क्यों रखना चाहते हैं, ये सिगरेट आपको भगवान के पास जाने से रोक रहा है, इस सिगरेट को आप हटा दीजिए। तो श्याम सुंदर प्रभु उसके बाद से सिगरेट उन्होंने छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया और सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पास्ट टाइम बताते हैं कि प्रभुपाद ने मुझे डांटा नहीं बट प्रभुपाद के केवल इतना बोलने से मेरा हृदय पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, प्रभुपाद जी ने न्यू जगन्नाथपुरी नाम दिया था सैन फ्रांसिस्को को, और प्रभुपाद जी ने यह भी बताया था कि जब भी भगवान से मिलने आते हैं तो भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो सबसे बोला था कि आप लोग जब भगवान से मिलने आते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके आया करिए। तो जितने भी हिप्पी आए थे, सभी लोग जो सैन फ्रांसिस्को मंदिर में आते थे, कुछ ना कुछ लेके आते थे, कुछ फूल लेके आते थे और कुछ लेके आते थे। और इनिशियल समय में सबसे पहला मंदिर था वो, क्योंकि जगन्नाथ जी के सबसे पहले विग्रह इस्कॉन में वहां पे आए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो इस प्रकार से बहुत सारी ट्रेडिशनल आरती इतनी नहीं होती थी क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं था कि आरती क्या कहलाती है। तो वो लोग हिप्पी लोग आते थे और मोमबत्ती लेके आते थे, वो मोमबत्ती से भगवान की आरती करते थे अलग अलग। और बाकी प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ बेसिक आरती उनको सिखाई थी। किसी का हाथ उठा हुआ है, कुछ प्रश्न पूछना है? RMX 2030 आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ प्रश्न है आपको? हाँ
वो सर, जब प्रभुपाद ने हिप्पीज को बदला,
हाँ,
तो हम भी क्या आसपास के जो बुरे नशा करते हैं उनको बदल सकते हैं?
हाँ बदल सकते हैं। आप इस प्रश्न को रखिए, थोड़ा याद रखिए, ये क्लास जब एंड होगा उस समय इसको और डिटेल में आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है क्लास के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। दिव्यमान है ना?
हाँ जी।
ओके तो न्यू जगन्नाथ पुरी मंदिर में जब वो जो भी हिप्पी आते थे तो वो कैंडल मोमबत्ती लेके आते थे और भगवान के लिए गिफ्ट लेके आते थे, और सब मोमबत्ती से भगवान की आरती करते थे, भगवान को गिफ्ट देते थे। प्रभुपाद बहुत खुश होते थे कि हिप्पी लोग जगन्नाथ जी की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है इनको, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते थे कि भगवान आप तो पूरे संसार के नाथ हैं और ये लोग अज्ञानी हैं, जितने भी हिप्पी हैं ये सभी अज्ञानी हैं, तो इन पे कृपा करिए और जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं उसको आप स्वीकार करिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था, प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा निकाला, फिर प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद जी इंडिया आए थे, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में भी थे और जब इंडिया में भी थे, उनका एक फीचर था, प्रभुपाद इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि किसी से कुछ देर के लिए मिलते थे और लोगों को भक्त बना लेते थे, उनको आकर्षित कर लेते थे। जैसे प्रभुपाद जी के पास उनके एक शिष्य के पिता आए थे, गिरिराज स्वामी महाराज के पिता प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद के सामने, वो इतने धनी व्यक्ति थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने एक चेक बुक रख दी कि ये चेक में आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लिख लो और मेरे बेटे को आप छोड़ दो। तो प्रभुपाद ने बोला आपके बेटे को तो हमने पकड़े ही नहीं है, वो तो जब चाहे तो जा सकता है, और गिरिराज महाराज ने फिर जाने से मना कर दिया, बोलते नहीं मैं यहाँ पे ही रहूंगा। इसी तरह से जब इन्होंने प्रभुपाद जी के पास दो भाइयों ने ज्वाइन किया था, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, उनको उन्होंने प्रभुपाद को ज्वाइन किया था, तो उनकी माँ प्रभुपाद के पास मिलने के लिए आती है और प्रभुपाद से बोलती हैं कि मेरे दोनों बच्चे आपके पास आ गए। तो प्रभुपाद ने बोला कि वो माँ एक्चुअली कंप्लेन करने के लिए आई थी, पर प्रभुपाद ने बोला आपके बच्चे तो एक्चुअली ऑलरेडी घर छोड़ चुके थे, वो हिप्पी थे, वो तो ये सब काम करते थे, सुखी भी नहीं थे, उनको मैंने अपने घर में जगह दी, अपने मंदिर में जगह दी, अभी वो अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अच्छे से स्वस्थ हैं, खुशी हैं, तो आपको तो मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं, आपके बच्चों को मैंने खाने पीने के लिए दिया, इतना अच्छा सब कुछ दिया, तो आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, तो और साथ साथ आपको मुझे डोनेशन देना चाहिए कि मैं आपके बच्चों की और आपके बच्चे जैसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। तो उनकी माँ ने बोला पर डोनेशन की बजाय मैं तो अपने दोनों बच्चे दे चुकी हूँ। इस तरह से प्रभुपाद ने उनको बिठा के फिर गुलाब जामुन खिलाया, और प्रभुपाद एक बार जिसको गुलाब जामुन खिलाते थे वो व्यक्ति फिर फ्लैट हो जाता था, वो प्रभुपाद उसके बाद वो एकदम शांत हो जाता था। तो प्रभुपाद नॉर्मली किसी से कुछ मिनट मिलते थे तब भी उसको इन्फ्लुएंस कर लेते थे अपने भक्ति के प्रभाव से, और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्य बनाए इसके कारण, कुछ कुछ शिष्यों को केवल एक बार उन्होंने बोला और उस शिष्य ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, प्रभुपाद की शुद्धता के कारण और प्रभुपाद की इन्फ्लुएंसियल क्षमता के कारण, प्रभुपाद की भक्ति की शक्ति के कारण, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, बहुत सारे शिष्यों को भक्त बनाया, बहुत सारे लोगों को शिष्य बनाया और उनसे कृष्ण भक्ति का प्रचार कराया। तो जब से प्रभुपाद इंडिया आते हैं तो उनके साथ दो शिष्यों को लेके आते हैं, कीर्तनानंद महाराज और अच्युतानंद प्रभु, और उसके बाद 6 महीने भारत में रह के, ये हमने डिस्कस किया था, भारत में रहते हैं तो प्रभुपाद जी अलग अलग मठ में जाते हैं, अब अपने गॉड ब्रदर्स को इनवाइट करते हैं उनके साथ आने के लिए, परंतु कोई उस समय तैयार नहीं होता है, और जब प्रभुपाद इस बार 1968 में जब वापस सैन फ्रांसिस्को गए, तो सैन फ्रांसिस्को में एक भक्त ने ज्वाइन किया था, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमाल कृष्ण महाराज एक्चुअली एक दूसरे योगा टीचर के पास, योगा टीचर और आध्यात्मिक टीचर भी थे वो, उनके पास जाते थे, पर जब वो प्रभुपाद के पास आना चालू किए, तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज दोनों लोग प्रभुपाद के पास आना चालू किए, तो उनको प्रभुपाद की फिलोसफी ज्यादा अपीलिंग लगी और धीरे धीरे उनका प्रभुपाद से ज्यादा आकर्षण हुआ, और फिर वो प्रभुपाद की फिलोसफी उस गुरु के पास जाके बताने लगे, क्योंकि उस गुरु के राइट हैंड बन गए थे। कई बार ऐसा होता था उस गुरु की एब्सेंस में ये लोगों को क्लास देने के लिए बोला जाता था, तो फिर ये लोग प्रभुपाद की फिलोसफी बताने लगे, और वहां से कुछ लोगों को लेके प्रभुपाद के पास आ गए। फाइनली तमाल कृष्ण महाराज ने फिर सेंट फ्रांसिस्को मंदिर में आए, और तमाल कृष्ण महाराज थे और विष्णुजन महाराज थे, ये दोनों लोग जब वहां पे आते हैं तो जिस रात में आते हैं उसके अगले दिन जब ये लोग जाते हैं तो उस मंदिर में जो एक भक्त है उनकी पत्नी इतनी अच्छी भक्त नहीं थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति से उसका अफेयर था, वो भाग जाती है और उसके पति को शक होता है कि वो विष्णुजन महाराज के साथ भाग गए, तो विष्णुजन महाराज को अटैक करने के लिए आते हैं। बाद में प्रभुपाद को पता चलता है तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, वो जो वाइफ थी, जो स्त्री थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो चली गई थी। तो इस तरह से ये लोग बच जाते हैं। पहले इनके ऊपर आरोप आता है कि आपने उसकी वाइफ को अपने ऊपर मतलब इस तरह से अफेयर में उकसाया और अपने साथ भगा के ले गए, तो बाद में वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। फिर इन दोनों लोगों को मंदिर में एंट्री मिलती है और धीरे धीरे तमाल कृष्ण महाराज बहुत मेन लीडर बन जाते हैं उस जगह पे, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज नगर संकीर्तन इस्कॉन में जो हुआ है उसको सिस्टमेटिक डेवलप करने का श्रेय तमाल कृष्ण महाराज को जाता है। वो लोगों को बाहर जाके संकीर्तन करने में डर लगता था, शर्म भी आते थे, पर तमाल कृष्ण महाराज ने सिस्टमेटिक तरीके से चालू किया, लोगों को दो लाइन में लेके जाना, कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा, कौन कितनी देर गाएगा, कौन बीटीजी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। उस समय प्रभुपाद बुक्स नहीं थी ज्यादा, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे थे परंतु बैक टू गॉडहेड मैगजीन था उस समय, तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन कौन सेल करेगा, कौन नगर संकीर्तन करेगा, ये सब तमाल कृष्ण महाराज ने डिजाइन किया। तो इस्कॉन में पहला ऑफिशियल सिस्टमेटिक नगर संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन तमाल कृष्ण महाराज के द्वारा प्रारंभ हुआ और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को अपनी नगर संघ अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज के द्वारा उन्होंने नगर संकीर्तन को बहुत फेमस कर दिया इस्कॉन के अंदर। और फिर प्रभुपाद ने उनको तमाल कृष्ण महाराज को लॉस एंजलिस मंदिर में भी भेजा, वहां पे भी उन्होंने नगर संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। और फिर उसके बाद उनको अलग अलग जगह भेजा, जहां भी उनको भेजा उनके अंदर इतनी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज थी कि जहां भी जाते थे वो मंदिर का बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसको संकीर्तन। तो इस तरह से वो श्रील प्रभुपाद के बहुत क्लोज डिसाइपल बन गए। श्रील प्रभुपाद ने एक जगह ऐसा बोला भी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्रैंड डिसाइपल सबसे प्रिय ग्रैंड डिसाइपल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने एक जगह पे बताया भी है कि भक्ति सिद्धांत के जितने भी ग्रैंड डिसाइपल हैं उसमें से, और इवेंचुअली जब लॉस एंजलिस तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं तो लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा चर्च होता है, उस चर्च को प्रभुपाद जी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो चर्च क्रिश्चियन चर्च होता है बट उसको कोई यूज नहीं करने वाला होता है, तो प्रभुपाद उसको मंदिर बनाते हैं। क्या होता है, प्रभुपाद जिस दिन मंदिर खोलने वाले होते हैं तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों को बुलाते हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, कुछ चेयर्स लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, और शाम के समय का टाइम रहता है 6 बजे या 7 बजे का टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रभुपाद वेट करते हैं, वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, 6 से 7, 8, 9, 10 बज जाता है, कोई पत्रकार नहीं आता है। तो सब बहुत सोचते हैं कि हमने इतना कोशिश किया पर कोई पत्रकार नहीं आया, कवरेज करने के लिए कोई नहीं आया। प्रभुपाद भी पूछते हैं जो व्यक्ति वहां पे इंचार्ज होते हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो व्यक्ति बताते हैं कि प्रभुपाद ये सब तो मसालेदार न्यूज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एक नया मंदिर खुल रहा है उसके लिए कौन आएगा। तो प्रभुपाद फिर बहुत अच्छा प्रसाद बना रहता है सबके लिए, प्रभुपाद उस प्रसाद को सब भक्तों को खिलाते हैं। तो उससे एक चीज पता चलता है कि प्रभुपाद अपनी तरफ से प्रयास करते थे परंतु कभी दुखी नहीं होते थे, अगर प्रयास असफल हो जाए तो दुखी नहीं होते थे। ऐसे ही एक बार न्यूयॉर्क में भी ऐसा हुआ था, प्रभुपाद एक जगह पे लेक्चर देने के लिए गए तो बहुत बड़ा हॉल रेंट पे लिया था लोग शिष्यों ने, न्यूयॉर्क के भक्तों ने ऑर्गेनाइज किया था, और करीब 300-400 की कैपेसिटी का हॉल था और केवल 6 लोग सुनने के लिए आए थे। तो जब प्रभुपाद आए तो 6 लोग बैठे थे केवल सामने, और उनके शिष्यों ने सोचा कि प्रभुपाद बहुत नाराज होंगे, पर प्रभुपाद ने उस चीज का जिक्र नहीं किया, पूरा 1 घंटे पूरा लेक्चर दिया, स्ट्रॉन्गली लेक्चर दिया, और उनके शिष्यों को भी लग रहा था प्रभुपाद इतना किस केवल 5-6 लोगों के लिए प्रभुपाद इस तरह से बोल रहे हैं। और बाद में पता चला कि उन लोगों में से एक व्यक्ति जो थे वो प्रभुपाद के शिष्य बन गए और वो बाद में संन्यास भी ग्रहण किए उन 6 लोगों में से। पर जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आप तो वहां पे 6 लोग थे, आपने क्यों क्लास, आप क्यों इस तरह इतना देर तक क्लास देते रहे या कीर्तन किया, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आपने देखा नहीं, ब्रह्मा जी भी आए थे वहां पे, नारद मुनि भी आए थे। तो प्रभुपाद का दिव्य विजन था, इसलिए वो इन देवताओं को देख सके। और प्रभुपाद ने बताया कि जब भी कभी भगवान के वाणी का गुणगान होता है तो उनके भक्त सुनने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा नारद उस समय प्रभुपाद के वचनों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की शुद्धता के कारण प्रभुपाद इतने बड़े शुद्ध भक्त थे कि जब वो भगवान को ग्लोरीफाई करते थे तो नारद मुनि ब्रह्मा जी उस जगह पे उपस्थित होते थे। इस पास्ट टाइम से हमें समझ में आता है। और इवेंचुअली लॉस एंजलिस जो था वो इस्कॉन का वेस्टर्न हेडक्वार्टर में कन्वर्ट हुआ, पश्चिम देशों में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ उस समय, और उस मंदिर को डेवलप करने में मेन हाथ श्री श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का था। तमाल कृष्ण महाराज ने एक पुस्तक भी लिखी है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। उस पुस्तक में महाराज बहुत डिटेल बताते हैं प्रभुपाद ने उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए और सारी अलग अलग घटनाएं बताते हैं। और लॉस एंजलिस के बाद जब तमाल कृष्ण महाराज को लंदन भेजा गया, नहीं लंदन के पहले जर्मनी गए वो लोग, तो जर्मनी में भी उन्होंने नगर संकीर्तन स्थापित किया। उसके बाद जब लंदन गए तो उस समय तमाल कृष्ण महाराज का मैरिज नहीं हुआ था, परंतु वो मैरिड लोगों के साथ में रहते थे। जो और भक्त थे वो सभी शादीशुदा भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे, तमाल कृष्ण महाराज का मैरिज नहीं हुआ था। तो महाराज उस पुस्तक में लिखते हैं कि मुझे लगा कि मुझे भी मैरिज लाइफ में एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों लोग साथ में सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और प्रभुपाद की सेवा करेंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, पहले तो प्रभुपाद ने मना किया, फिर प्रभुपाद ने सोचा कि क्या इच्छा है, तो प्रभुपाद मान गए। ये सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है प्रभुपाद लीला में इतने। पर जब तमाल कृष्ण महाराज की मैरिज हुई तब उनको लगा कि नहीं, मैरिज के लिए मैं सूटेबल नहीं, परंतु उस समय तो मैरिज हो चुकी थी। तो फिर इस तरह से हुआ कि महाराज अभी संन्यास लेना चाहते थे, तो दो दो गुट बन गए। एक महाराज की वाइफ जो थी माधवी देवी दासी, उनका एक ग्रुप था, सारी माता जी जो उस ग्रुप में थे वो बोलते थे नहीं, तमाल कृष्ण महाराज इसको तमाल को संन्यास नहीं मिलना चाहिए। और जो प्रभु जी लोग थे तो तमाल कृष्ण महाराज के फ्रेंड, वो बोलते थे कि नहीं अभी संन्यास लेना है आपको। तो ऐसा हुआ कि तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के साथ जयपुर जाते हैं, और उनकी माँ, उनकी वाइफ जो है वो कहीं दूसरी जगह, भारत में ही कहीं किसी जगह पे रहते हैं। और वहां पे फिर कमल कृष्ण महाराज अपनी संन्यास की ड्रेस खुद ही रंगते हैं, अपना संन्यास दंड खुद बनाते हैं, और प्रभुपाद की क्लास के बाहर जाके बैठ जाते हैं। प्रभुपाद बाहर आते हैं तो कमल कृष्ण महाराज पूछते हैं, कमल कृष्ण महाराज से पूछते हैं, महाराज बोलते हैं प्रभुपाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे कृपा अलाउ करिए। तो प्रभुपाद फाइनली जब देखते हैं कि इनकी बहुत इच्छा है तो प्रभुपाद उनको संन्यास के लिए अलाउ कर देते हैं। ये पूरा सेक्शन जब आप प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके उसके साथ कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि क्यों उन्होंने संन्यास लिया, परंतु तमाल कृष्ण महाराज एक्चुअली लिखते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैरिज लाइफ कैसा होता है, मैं तो जस्ट सोचा कि ये सभी लोग मैरिज कर रहे हैं तो मैंने भी मैरिज कर लिया, परंतु मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लाइफ में एंटर करूं, वो जब मैं एंटर किया तब मुझे पता चला था, इसलिए मैं फिर संन्यास लिया। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो इस तरह से होते हैं, इस्कॉन की हिस्ट्री में शायद मोस्टली एक ही केस इस प्रकार से होगा। प्रभुपाद ने उनको संन्यास के लिए अलाउ भी कर दिया, संन्यास प्रभुपाद जी ने खुद ही उनको दिया। बाद में उनकी वाइफ को प्रभुपाद ने बुला के बताया कि आप इस्कॉन में सेवा करिए, आपके पति का तो मैंने संन्यास दिया है, आप इस्कॉन में सेवा करिए। और उनकी वाइफ भी बाद में मान गई इस तरह से। तो इसके बाद इसी समय में हमने लास्ट वीक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तीन जो गृहस्थ भक्त थे, गृहस्थ भक्त जो वो लंदन जाने के पहले मॉन्ट्रियल में गए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए और प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने के लिए, तो प्रभुपाद ने उनको आशीर्वाद दिया था, प्रभुपाद ने अपने चरण उनके सिर के ऊपर रखे थे। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे प्रभुपाद ने अपने चरण चरणों को दूसरे के सिर पर रखा, जैसे नित्यानंद प्रभु ने अपने रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे अपने चरण रखे थे, उसी तरह से प्रभुपाद ने इन गृहस्थ भक्त जो गए थे इनके सिर पे अपने चरण रखे और बोले कि आप जाइए लंदन, लंदन में कृष्ण भक्ति को फैलाइए। और ये भी हमने बाद में डिस्कस किया था कि जब वो लोग लंदन गए थे तो एम्स्टर्डम से लंदन जाने के लिए जो पैसा लगता था, लंदन में एंट्री के लिए जो पैसा लगता था वो उनके पास नहीं था। 6 लोगों को जितना पैसा लगना चाहिए वो नहीं था, 2 लोगों के हिसाब से पैसा था। तो एक एक कपल जाते थे और फिर वो पैसा वापस भेजते थे, फिर दूसरे जाते थे, फिर पैसा वापस भेजते थे, फिर तीसरे कपल गए थे। मतलब उस कंट्री में एंट्री होने के पहले आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, तब उस कंट्री में, उस देश में एंट्री मिलेगी। तो वो उनको नहीं थे उतना पैसा, इसलिए 3 बार वो लोग गए। और वहां पे गए तो फिर ये लोग अलग अलग जगह रहते थे क्योंकि रहने की जगह नहीं थी। कुछ लोगों को एक व्यक्ति ने कुछ रेंट पे दिया, कुछ लोग रोड के किनारे रहते थे। इस प्रकार से बहुत कठिनाई से ये लोग प्रयास कर रहे थे। और श्याम सुंदर प्रभु जो थे, सैम, जिन्होंने जगन्नाथ जी को बनाया था, उनको पता चला कि बीटल्स जो एल्बम है, बीटल्स रिकॉर्ड जो है, वो श्रील प्रभुपाद मतलब वो आध्यात्मिकता में इंटरेस्टेड है। क्योंकि 1967 में बीटल्स ग्रुप भारत आए थे और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी का जो आश्रम है ऋषिकेश में, वहां पे गए थे। तो ये बात श्याम सुंदर प्रभु को जब पता चली तो उनको लगा कि ये बीटल्स से एक बार मिलना चाहिए। और बीटल्स में सबसे फेमस जॉर्ज हैरिसन थे, तो श्याम सुंदर प्रभु उनसे मिलने के लिए जाते हैं। लंदन में वो रहते हैं तो एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में उनको कोई ने इनवाइट नहीं किया रहता है, परंतु वो बाहर खड़े रहते हैं। और जब बीटल्स का 4 लोगों का ग्रुप था, उस 4 में से एक लेडी जब आती है तो वो इनसे बोलती है कि आपको शायद जॉर्ज ने इनवाइट किया होगा। और ये भी बोलते हैं हाँ जॉर्ज ने इनवाइट किया। तो वो उनको अपने साथ में लेकर चली जाती है अंदर। और जॉर्ज हैरिसन ऑलरेडी इनको ढूंढते रहते हैं। अमेजिंगली चीज रहती है, भगवान का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जॉर्ज हैरिसन उनको अमेरिका में एक बार देख चुके रहते हैं। तो जॉर्ज हैरिसन उनसे मिलना चाहते थे परंतु उस समय नहीं मिल पाए थे। और यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन ने जब इनको देखा कि कोई एक इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो तुरंत उनके पास आए और आके बोला कि आप लोग कहाँ थे, मैं तो आपको कितने समय से ढूंढ रहा था। तो ये भगवान का अरेंजमेंट था कृष्ण भक्ति का प्रयास करने का। जो जॉर्ज हैरिसन इतने फेमस थे कि जब उनका 25वां जन्मदिन हुआ था, 25th बर्थडे, तो उनको 50,000 ग्रीटिंग कार्ड मिले थे। उस समय कोई फोन या मेल तो नहीं होते थे, 50,000 ग्रीटिंग कार्ड आए थे उनके पास। एक छोटे से लॉरी में भर के ग्रीटिंग कार्ड लेके आना पड़े, इतने फेमस थे जॉर्ज हैरिसन। और वो जॉर्ज हैरिसन खुद श्याम सुंदर प्रभु से मिलना चाहते थे, उनको ढूंढ रहे थे कि हरे कृष्णा वाले लोग कहाँ हैं। तो जॉर्ज हैरिसन जब मिले उनसे, उसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने इनसे बोला कि आप स्वामी जी को भी यहाँ बुलाइए। तो फिर श्रील प्रभुपाद को लंदन इनवाइट किया गया और श्रील प्रभुपाद को जॉर्ज हैरिसन ने अपने घर में, अपने बंगले में, जॉन लेनन एस्टेट उस समय बोला जाता था, बाद में उसका नाम भक्ति वेदांत मैनर हुआ, तो वहां पे प्रभुपाद को रोका गया मैनर में। और प्रभुपाद चाह मैनर एक्चुअली सिटी के दूर था, अभी भी भक्ति वेदांत मैनर लंदन सिटी से थोड़ा सा दूर है। तो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद मैनर तो उनको बहुत अच्छा लगा, पर प्रभुपाद चाहते थे कि सिटी के बीच में भी कुछ मंदिर होना चाहिए। और जब प्रभुपाद गए थे उस समय कोई ऐसा सेंटर नहीं था, ये सब लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। तो कभी प्रभुपाद का अगर प्रोग्राम कुछ ये लोग अरेंज करते थे तो कभी किसी के हॉल रेंट पे ले लेते थे या कभी खुली जगह में करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसे अगर हमारा एक फिक्स एड नहीं होगा तो शायद हम लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने फिर लंदन सिटी के बीच में जगह ढूंढी। और जब प्रभुपाद भक्ति वेदांत मैदान में रुके हुए थे तो उसके कुछ कुछ केसेस आते हैं। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो एक दो बार उन्होंने बताया कि पाश्चात्य देशों में बहुत सारे भूत पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत पाप करते हैं और पाप करके लोग प्रेत योनी भूत योनी में जाते हैं। तो भक्ति वेदांत मैनर में एक स्थान था जहाँ पे भूत था, वहां पे मैनर के कुछ कर्मचारी रहते थे, जॉर्ज हैरिसन के कुछ फैमिलीज रहती थी जो वहां पे भक्ति वेदांत मैनर में काम करती थी। तो क्या होता था रात में वहां पे ऐसा आवाज आता था, दो स्टोरीज थी, एक नीचे एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे पति पत्नी, उनको रात में आवाज आती थी फर्स्ट फ्लोर पे से कि कोई एकदम से घिसटाते हुए कोई चीज को जा रहा है। जोर जोर से लोगों के दौड़ने की आवाज आती थी, हंसने की आवाज आती थी, अजीब अजीब तरीके से। वो लोग डर जाते थे। और एक रात में तो ऐसा हुआ कि उनका पति सो रहा था, उस पति ऐसा लगा कि पति को कोई गला दबा रहा है, तो वो लोग बहुत डर गए। और उसके अगली रात में फिर ऐसा हुआ कि कोई किसी ने पति को उठा के बिस्तर से गिरा दिया, उसको पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कोई ने हाथ में उठाया और फेंक दिया। तो व्यक्ति बहुत डर गए और वो लोग जॉर्ज हैरिसन के पास आते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है, कोई भूत है कुछ है। और जॉर्ज हैरिसन फिर उस समय प्रभुपाद को भी पता चला, प्रभुपाद वहीं पे रहते थे। प्रभुपाद ने जॉर्ज से बोला कि कोई बात नहीं, भूत को हम भगा देंगे, कोई समस्या नहीं। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से बोला कि अगले दिन सुबह मंगल आरती होगी, तो मंगल आरती के बाद जो जल हम भगवान को ऑफर करते हैं और बाद में उसी जल को हम भक्तों को, भक्तों के ऊपर चढ़ाते हैं, भक्तों को स्पर्श कराते हैं, वो जल साथ में रखना। और शंख लेके मंगल आरती करने के बाद या सुबह का प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पे आना और शंख बजाना। शंख बजाने के बाद इस जगह पे आरती करना, आरती के बाद कीर्तन करना, कम से कम 5 घंटे कीर्तन करने का प्रभुपाद ने बोला। तो उनके शिष्य लोग वहां पे आ गए दूसरे दिन, सभी लोग मिलके कीर्तन करना चालू किए, शंख बजा के और वो पानी का छिड़काव करके सबने कीर्तन करना चालू किया। जो जो भक्त वहां पे गए थे, वो भक्त बाद में अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि एक समय उनको ऐसा लगा कि कोई कोई शक्ति थी जो उनके आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। और कुछ समय तक बहुत ज्यादा प्रेशर था वहां पे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सारी शक्ति हमें रोकने का प्रयास कर रही है, परंतु चूंकि कीर्तन चलता था इसलिए कोई रोक नहीं पाया। फाइनली वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। 4-5 घंटे कीर्तन करके जब ये लोग वापस आए तो पूरा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके बाद से वहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं। तो प्रभुपाद ने बताया कि हरि नाम संकीर्तन अगर हम करेंगे तो कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं हो सकती है। तो जब भी बहुत सारे कई बार संसार में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के पाप के कार्य होते हैं, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि आत्माएं पाई जाती हैं, भूत पाए जाते हैं। सही हो सकता है, लोग साथ में संकीर्तन करते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उसके सामने, प्रैक्टिकली इसको बताया। तो और इसके बाद 1972-73 का एक फर्स्ट टाइम है जिसमें प्रभुपाद जब स्विट्जरलैंड में थे एक बार, तो श्याम सुंदर प्रभु ने एक एक डिजिटल घड़ी, उस समय नई घड़ी आई थी डिजिटल क्वार्ट्स, और केवल 1,000 कॉपी उस समय बड़ी थी और लिमिटेड एडिशन था। तो श्याम सुंदर तो उसको खरीद के लाए। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, परंतु जितना भी उनके पास पैसा था सब कुछ उन्होंने दे के प्रभुपाद के लिए वो घड़ी खरीद के लाए। वो घड़ी बहुत सुंदर लगती थी और उसमें लाल लाल कलर के लेटर्स उस पे आते थे। किसी ने उस समय तक डिजिटल घड़ियां नहीं देखी थी, 1972 में डिजिटल घड़ी का इतना फैशन नहीं था। तो उस घड़ी में क्या था कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो उसमें टाइम दिखाई दे जाता था। तो प्रभुपाद को उन्होंने दिया, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे उस घड़ी को देख के। और प्रभुपाद वहां प्रभुपाद बैठते थे, वो उसको बार बार टाइम देखते थे, लोगों को भी बताते थे वो कि क्या है इसमें। और प्रभुपाद पूछते थे, देखो इसमें क्या टाइम है, कितना आसान है इसको यूज करना। और कुछ दिन बाद प्रभुपाद फिर उसको पहनते भी नहीं थे, किसी और को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। उससे पता चलता है कि प्रभुपाद बहुत डिटेच थे। प्रभुपाद कभी अपने पास चीजों को एक्यूमुलेट नहीं करते थे, जो भी उनके पास रहता था उसको यूज करते थे, फिर अगर किसी और को आवश्यकता होती थी तो दे देते थे। प्रभुपाद के बहुत सारे सामान वो अपने शिष्यों को दे देते थे, अपनी घड़ियां, अंगूठी और जो भी वस्तु उनको शिष्यों की आवश्यकता होती थी प्रभुपाद उनको दे देते थे। तो यद्यपि इतनी महंगी घड़ी उनके पास थी, परंतु वो डिटेच नहीं थे संसार। ये एक लक्षण भी है शुद्ध भक्त का कि भौतिक संसार की किसी वस्तु से वो डिटेच, किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होते हैं। उस वस्तु को अगर वो यूज करते हैं तो कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं, अगर वो वस्तु नहीं होती है तो उससे आकर्षित नहीं होते। और उसके बाद 1970 में एक स्पेसिफिक केस आता है जो कि प्रभुपाद लीला में बहुत डिटेल में बताया गया है। उस चैप्टर का नाम है थ्रेट इन इस्कॉन। इसलिए प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि प्रभुपाद दर्शनार्थी के बाद जो चरणामृत लिया जाता है, जब प्रभुपाद चरणामृत को टेस्ट करते हैं तो चरणामृत में नमक डाला रहता है शक्कर की बजाय, तो प्रभुपाद को गुस्सा आता है। प्रभुपाद बोलते हैं ये चरणामृत में नमक किसने डाला है। तो जब वहां के अध्यक्ष से पूछते हैं तो अध्यक्ष तो कुछ नहीं बोल पाते, उनको नहीं पता होता है। पीछे से एक औरत, एक लड़की जो थी वो उठ के खड़ी होती है और मुस्कुराने लगती है कि प्रभुपाद मैंने डाला। प्रभुपाद उसको डांटते हैं कि आपको एटिकेट नहीं आता भगवान के लिए चरणामृत कैसे बनाया जाता है, ऐसा डांट के आ जाते हैं। और उसके बाद उसी दिन दोपहर में क्या होता है, प्रभुपाद के रूम में एक उनकी शिष्या सफाई करने के लिए आती है, और जाते समय प्रभुपाद की फोटो जो है, प्रभुपाद का फोटो मतलब फ्रेम, फोटो फ्रेम जो था वहां पे उनके टेबल पे रखा था, उस फ्रेम को उल्टा रख के चली जाती है। मतलब फ्रेम सीधा रहना चाहिए प्रभुपाद की फोटो, तो फोटो उल्टा करके फ्रेम को लग के रख के चली जाती है बिना ध्यान दिए। इसी तरह से प्रभुपाद एक एक पुस्तक प्रिंट होके आती है बॉस्टन से, तो उस पुस्तक को प्रभुपाद खोलते हैं तो पुस्तक पूरी फट जाती है, बीच से फट जाती है। नई पुस्तक, बाइंडिंग वाली पुस्तक, इतनी खराब तरीके से बाइंडिंग उसकी होती है, खराब क्वालिटी से, कि खोलते ही साथ पुस्तक फट जाती है। और साथ साथ उस पुस्तक में प्रभुपाद का नाम लिखा था, ना तो उनके आगे हिज डिवाइन ग्रेस लिखा, ना तो कुछ टाइटल या सम्मान लिखा, केवल लिख दिया एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं कि इन लोगों को कुछ कुछ मायावाद की टेंडेंसी इनके अंदर आ रही है, जिसके कारण ये गुरु का सम्मान करना भूल गए हैं। यद्यपि प्रभुपाद खुद के लिए सम्मान नहीं चाहते थे, प्रभुपाद परंतु स्थापित करना चाहते थे कि शिष्य का गुरु के प्रति किस प्रकार से संबंध होना चाहिए। तो जब प्रभुपाद ने देखा कि इस प्रकार से उनके जो शिष्य हैं उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने सोचा कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए उनको कुछ और तरीके से करना होगा। प्रभुपाद उस समय वो मंदिर छोड़ के चले गए, लॉस एंजलिस मंदिर छोड़ के चले गए। तो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसी समय इंडिया जाना चाहता हूँ, भारत जाके प्रचार चालू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गॉड ब्रदर ही मेरे शिष्यों को दूषित कर रहे हैं। वास्तविकता में ये सब फिलोसफी कहाँ से आ रही थी? प्रभुपाद के शिष्यों को, वो प्रभुपाद पहली बार भारत लेके गए थे जब प्रभुपाद क्वाटेक आया था, तो वहां पे उनके शिष्य वहां पे रुके हुए थे, और प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स उनके शिष्यों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे थे, ये बोल के कि प्रभुपाद तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, प्रभुपाद तो केवल बिजनेसमैन थे, वो तो अपने बिजनेस के दिमाग के कारण इतने सारे मंदिर खोल पा रहे हैं, बाकी उनमें और कुछ नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद के गॉड ब्रदर उनके शिष्यों का कान भरते थे, जिससे उनके शिष्यों की प्रभुपाद के ऊपर से श्रद्धा कम होती जा रही थी। प्रभुपाद जानते थे कि उनके गॉड ब्रदर उनसे जलन करते थे, प्रभुपाद की सफलता से ईर्ष्या होती थी, और वो भारत में जिन शिष्यों के साथ कर रहे थे वो शिष्य अमेरिका में बता रहे थे अपने मित्रों को, तो उस कारण से ये माहौल जनरेट हुआ था। तो प्रभुपाद ने सोचा उसको, हमें प्रभुपाद उस समय वहां से चले गए, और जब प्रभुपाद जापान में थे, जापान में प्रभुपाद रुके थे, तमाल कृष्ण महाराज के साथ गए थे, तो जापान में प्रभुपाद दाई निपन प्रेस में जाते हैं। दाई निपन प्रेस में जाके भगवद गीता का जो पहला एडिशन दाई निपन प्रेस से जो निकलता है, उस एडिशन के प्रिंटिंग के लिए वहां जाते हैं। तो वहां के मेन एक मैनेजर से मिलते हैं, उस मैनेजर के पास ताश की गड्डियां होती हैं, तो ताश की गड्डियां प्रभुपाद जब ताश की गड्डियों को देख के उससे पूछते हैं ये यहाँ पे क्यों रखी है, तो मैनेजर बताता है, मैनेजर उसके अंदर से एक ताश की गड्डी निकालता है, बीच में से बोलता है ये बीच वाली ताश की गड्डी मैं हूँ, और फिर अपने जो ताश की गड्डी है वो उसमें से एक ताश का पत्ता निकालता है, उस पत्ते को सबसे ऊपर रखता है, तो बोलता है मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मैं अभी इस संस्था में सबसे नीचे के स्थान पे हूँ, परंतु मैं सबसे ऊपर पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे लोगों को धोखा देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। तब प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं कि ये नेचर होता है भौतिक संसार में, हर व्यक्ति सुपीरियर बनना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा पहुंच बन जाऊं और सभी मेरी सेवा करें, और वास्तविकता में इसी के कारण हम इस संसार में आए भी हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के जैसे सर्वशक्तिमान बनना चाहते थे, और भगवान को ही रिजेक्ट करके हम फिर इस संसार में आते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल डिजीज है। और प्रभुपाद उस व्यक्ति के द्वारा समझाते हैं इस चीज को। और जब प्रभुपाद वृंदावन, जब प्रभुपाद जापान में रहते हैं, तभी प्रभुपाद को एक और न्यूज आती है, शॉकिंग न्यूज आती है, कि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन न्यू वृंदावन अमेरिका में होता है, और वहां पे प्रभुपाद के चार सन्यासी शिष्य एक लेक्चर में बताते हैं कि वास्तविकता में प्रभुपाद जो है वो भगवान है, प्रभुपाद कृष्ण है। और चूंकि हम लोगों ने प्रभुपाद को कृष्ण के जैसा नहीं समझा, इसलिए प्रभुपाद अमेरिका छोड़ के भारत भारत चले गए वापस। इस प्रकार से उनके सन्यासी शिष्य इस प्रकार से लेक्चर देते। तो कभी किसी ने सुना नहीं था प्रभुपाद भगवान है, प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं ऐसा कि मैं भगवान हूँ। जब पहली बार उनके कुछ शिष्यों ने सुना तो तुरंत फोन करके प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपके ये चार शिष्य हैं, ये लोग ऐसा ऐसा लेक्चर दे रहे हैं। प्रभुपाद ने तुरंत फोन पे बोला कि उनको भगा दो, इस्कॉन से निकाल दो उनको, जो वो बोल रहे हैं वो बोगस चीज है और ये चीज मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और अगले दिन सुबह उन चारों सन्यासियों को इस्कॉन से निकाल दिया जाता है। और प्रभुपाद दूसरे दिन सुबह जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद एक ऑडियो क्लास देते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे भेजते हैं न्यू वृंदावन के भक्तों को और उनको लेक्चर में पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से ये टेंडेंसी सोचना कि हमारे गुरु भगवान है, ये सोचना कितना डेंजरस है। क्योंकि ये व्यक्ति इसलिए सोचता है, वो सोचता है कि गुरु भगवान है, दैट मीन्स अगर हम गुरु बन जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं ये सब मायावाद है, ये बोगस फिलॉसफी है, और जो भी ये इस तरह से बोलता है कि गुरु भगवान है उसकी खुद की भगवान बनने की इच्छा होती है। इसलिए प्रभुपाद ने उन चार सन्यासियों को बाहर निकाल दिया इस्कॉन से। बाद में जब उन लोगों ने माफी मांगा तब वो सन्यासी वापिस इस्कॉन में प्रभुपाद ने उनको अलाउ किया। और वो सन्यासी जब बाहर गए एक गृहस्थ के घर पे रुके, और वो गृहस्थ के घर पे एक दिन के लिए एक रात में रुके थे, एक रात में रुके, उसको कुछ कुछ पुस्तकें दी, प्रभुपाद की पुस्तकें दी, और दूसरे दिन उसके घर से चले गए। बाद में वो गृहस्थ ने प्रैक्टिस किया, फिर बाद में प्रभुपाद के संपर्क में आए और वो गृहस्थ फिर प्रभुपाद से दीक्षा लिए, सन्यास भी लिए, और अभी भी वो सन्यासी है, इस्कॉन संस्थान है, बहुत फेमस सन्यासी वो गृहस्थ थे, परंतु एक दिन में इन भक्तों के संग मिला, उसके बाद वो प्रभुपाद के भक्त बन गए, प्रभुपाद के शिष्य बन गए। तो फिर प्रभुपाद लेके अपने कभी 20 भक्तों को लेके प्रभुपाद भारत आ जाते हैं वापस। और भारत में आके उनके जो शिष्य जो बिगड़ रहे थे इस प्रकार से, अलग 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 गॉड ब्रदर्स का संग लेके बिगड़ रहे थे, उन शिष्यों को प्रभुपाद हैंडल करते हैं। और प्रभुपाद वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी बनाते हैं। प्रभुपाद जी का बहुत समय से इच्छा था वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज करने का, मतलब ऐसे भक्तों का संघ जो प्रभुपाद के साथ जाएं और हर देश में संकीर्तन करें। तो उस पार्टी में प्रभुपाद ने पहले 15 लोगों को रखा था, वो 25 लोगों को रखा उसके अंदर। और प्रभुपाद ने अपना मिशन स्टार्ट किया भारत में, मुंबई, कोलकाता, बॉम्बे का पंडाल प्रोग्राम उसी समय हुआ था, पहला पंडाल प्रोग्राम। उसके बाद प्रभुपाद इंदौर भी गए थे, गीता भवन में प्रभुपाद का लेक्चर था। जब प्रभुपाद गीता भवन में गए तो कृष्ण अर्जुन की फोटो क्यों नहीं रखी है, तो उन्होंने हम तो कृष्ण अर्जुन को नहीं मानते, गीता तो एक संदेश है, कृष्ण अर्जुन तो ऐसा कोई नहीं है, वो तो केवल नाम के लिए यूज किया। तो प्रभुपाद ने बोला इवन आप देश की जब मीटिंग करते हो, देशभक्ति की भी जब मीटिंग होती है, तो कम से कम जवाहरलाल नेहरू गांधी उनको समझाते हैं, परंतु वो लोग नहीं मानते हैं। गीता भवन अभी भी इंदौर में स्थित है और गीता ऑर्गेनाइजर्स वो भक्त नहीं है, वो मायावादी लोग हैं या निराकारवादी। तो प्रभुपाद उस गीता भवन में आए थे और प्रभुपाद एक दो दिन फिर लेक्चर दिया, बाद में प्रभुपाद को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, प्रभुपाद वापिस आ गए। 1970 में प्रभुपाद जी सूरत भी गए और सूरत में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उस समय सूरत की आबादी बहुत कम थी, 5-4 लाख इस तरह से आबादी था, बट प्रभुपाद जी का स्वागत इस प्रकार से हुआ जैसे राजा के समान स्वागत हुआ, क्योंकि प्रभुपाद के साथ सारे के सारे विदेशी शिष्य आए थे। और प्रभुपाद जिस घर में थे उस घर से प्रभुपाद बाली में आके, तो ऐसा बताया जाता है कि आधे किलोमीटर तक लोग खड़े रहते थे प्रभुपाद का दर्शन लेने के लिए। प्रभुपाद की जो कथाएं होती थी उसमें हजारों हजारों लोग आते थे, और नगर संकीर्तन जब होते थे तो लोग आके उनके शिष्यों को टच करके देखते थे, कहीं ये लोगों ने ऊपर से पाउडर या चूना लगा के तो सफेद नहीं बन रहे हम लोगों को धोखा देने के लिए। मालती माता जी इस प्रकार से बताती है कि आके हमारी स्किन को टच करके वो लोग देखते थे, ये लोग सही में बाहर से आए हैं कि कोई सफेद चीज लगा के ये लोग इस प्रकार से गए। तो प्रभुपाद को सूरत में बहुत स्वागत हुआ। वहां पे ही प्रभुपाद ने बोला था कि सूरत शहर जो है वो वैष्णवों का शहर है और सूरत एक ड्राई घास के समान है, सूखी घास के समान है, थोड़ा सा वहां पे आग लगाएंगे तो कृष्ण भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। सूरत में अभी हम देखते भी हैं, सूरत में भक्ति का प्रचार कितना तेजी से हो रहा है। प्रैक्टिकली कॉन्ग्रीगेशन टीचिंग में अगर देखा जाए तो सूरत में बहुत सारे भक्त हैं, हजारों की संख्या में भक्त हैं। इवन अहमदाबाद से, बड़ौदा से भी बहुत ज्यादा भक्त सूरत में हैं और प्रचार भी वहाँ बहुत तेजी से होता है। कॉन्ग्रीगेशन स्पेसिफिकली कॉन्ग्रीगेशन प्रचार सूरत में बहुत होता है। तो प्रभुपाद की कृपा वहाँ पे थी स्पेशली। सूरत के बाद प्रभुपाद अमृतसर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से अमृतसर जाते हैं, अमृतसर से जब मुंबई लौटते रहते हैं तो प्रभुपाद को दिल्ली के एक व्यापारी मिलते हैं लाजपत नगर के, और व्यापारी उनको बताते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है दिल्ली में सेंटर खोलने का, मंदिर खोलने का। तो प्रभुपाद अपने दो शिष्यों को बोलते हैं, गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी को, कि आप दिल्ली में ही उतर जाओ इनके साथ और यहाँ पे मंदिर खोलो। ये बहुत अमेजिंग चीज है क्योंकि हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई अजनबी जगह पे हमें रोक के बोला जाए कि आप जाओ यहाँ मंदिर खोल दो। अभी भी हम उसके लिए तैयार नहीं हो सकते क्योंकि इतना आसान नहीं है मंदिर खोलना। और ये लोग तो विदेशी लोग थे, भारत में कुछ जानते भी नहीं थे, और केवल एक बिजनेसमैन ने प्रभुपाद से बोला यहाँ मंदिर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने दोनों से बोला कि आप यहीं उतर जाओ, और दोनों उतर भी गए और इवेंचुअली उन लोगों ने वहां पे सेंटर खोला। बाद में प्रभुपाद ने उन्हीं दोनों को वृंदावन भेजा, वृंदावन में भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन में बहुत मदद की है। प्रभुपाद के शिष्यों में ये जो गुरु के आदेश के प्रति श्रद्धा थी ये हाईएस्ट डिग्री की बोल सकते हैं। उनके शिष्य बहुत ज्यादा प्रभुपाद के लिए सरेंडर थे, जो भी प्रभुपाद बोलते थे उसको तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद फिर मुंबई आते हैं, मुंबई में जगह लेते हैं। मुंबई का स्ट्रगल कई भक्तों को पता भी है, मुंबई में मिस्टर नायर के साथ प्रभुपाद का जो स्ट्रगल होता है। और मेनली प्रभुपाद तीन चार जगह पे इंडिया में उस समय डेवलप करने का प्रयास करते थे, वृंदावन, मायापुर, मुंबई। एक्चुअली जगह उनको इन जगह पे ही मिली थी, वृंदावन, मायापुर, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर। ये कुछ कुछ सेंटर थे जो प्रभुपाद को उस समय जगह मिल चुकी थी। मुंबई में केस चल रहा था ऑलरेडी मिस्टर नायर के साथ, मिस्टर नायर फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे थे और वो मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास कर रहे थे। राधा दास बिहारी का विग्रह प्रभुपाद ने स्थापित किया था, उसके बाद मिस्टर नायर उसको जमीन को वापस लेके, जमीन के कागज अपने पास वापस लेके उसको प्रभुपाद के पैसे भी खाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय मिस्टर सेठी ने और हमारे कौन है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इन्होंने बहुत मदद की थी क्योंकि मंदिर को जब तोड़ने का समय आया था तो बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि मंदिर को नहीं टूटना चाहिए, एक बार अगर मंदिर बन गया तो वो नहीं टूट सकता है। और ऐसा था कि एक दिन कोर्ट का फैसला आने वाला था, बट कोर्ट के फैसला आने के पहले रातों रात उन लोगों ने मंदिर की फेंसिंग बना दी थी और मंदिर को प्रोटेक्ट कर लिया था, क्योंकि अगर मंदिर बन जाएगा एक बार तो मंदिर टूट नहीं सकता। इसलिए मिस्टर सेठी और ये सब लोगों ने मिलकर जुहू मंदिर के लिए बहुत सारी सेवा की, तो जुहू मंदिर की कंस्ट्रक्शन में बहुत मदद की। और साथ साथ प्रभुपाद को वृंदावन में जगह मिली थी और वृंदावन में प्रभुपाद पर्सनली आके कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना चाहते थे। और प्रभुपाद ने अपने कुछ कुछ शिष्यों को वृंदावन मंदिर में रखा, वृंदावन में जगह ढूंढ के वृंदावन में रखा उन्होंने। और वृंदावन में भी प्रभुपाद जब अमेरिका से आए तो उनके कुछ शिष्यों को ऐसा लगता था कि वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन धाम में हम कोयल की आवाज सुनेंगे, राधा कृष्ण के धाम में जाएंगे, परंतु प्रभुपाद ने सबको वहां पे एंगेज किया कंस्ट्रक्शन में। एक शिष्य आके प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद मैं आपको प्लीज करना चाहता हूँ, मैं वृंदावन धाम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं जाओ पहले सीमेंट के बोरे कैलकुलेट करके आओ, कितना सीमेंट का सप्लाई हो रहा है। और प्रभुपाद यही सब क्वेश्चन पूछते थे कि सीमेंट की सप्लाई कितनी हो रही है। उनके शिष्यों को आश्चर्य होता था कि वृंदावन में रह के भी हम सीमेंट गिन रहे हैं। तो एक बार एक शिष्य इस तरह से थे, वो प्रभुपाद के पास पूछने के लिए गए कि प्रभुपाद मैं जाके थोड़ा वृंदावन के अंदर के वनों में जाके राधा कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहता हूँ और नाम करना चाहता हूँ। प्रभुपाद उस शिष्य को साथ में लेके गए और प्रभुपाद खुद ही वो स्टोर रूम का गेट खोल के एक वो सीमेंट का बोरा, सीमेंट के वो कंटेनर आ रहे थे सप्लाई हो रहा था, तो प्रभुपाद उसको काउंट करने लगे कि एक एक बोरा आया, दो बोरा आया। प्रभुपाद ने सारे बोरे अपने सामने रखवाए और फिर स्टोर रूम का लॉक करके, चाबी लॉक करके उसको दिया, चाबी उसको दिया। प्रभुपाद ने बोला, ये भगवान कृष्ण बलराम का मंदिर है, इस मंदिर को बनने में सेवा करना वृंदावन धाम में जाके राधा कृष्ण के बारे में पढ़ने सुनने के समान ही है, उससे कम अंतर नहीं है। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी धाम में आए तो हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, केवल जाके घूमेंगे, यमुना में जाएंगे और बगल में जाके भगवान को पागलों जैसा ढूंढेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं, जो भी भगवान की सेवा है वो धाम धाम सेवा के समान है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। प्रभुपाद कुछ भी, जैसे प्रभुपाद से एक बार एक शिष्य ने पूछा, जो हम मंगल आरती में गाते हैं, निकुंज यूनो गति केली सिद्धे या लिधि युक्ति अपेक्षणीय, उस लाइन का मतलब है कि आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण को मिलवाने में, जो गोपियां रहती हैं, गोपियां राधा कृष्ण को एक साथ मिलवाने के लिए कार्य करती हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो है वो गोपियों की हेल्प करते हैं। तो एक शिष्य प्रभुपाद से पूछने के लिए गए इस लाइन का मीनिंग, कि प्रभुपाद इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो शिष्य को ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद शायद ऐसा बताएंगे कुछ एजोटेरिक टाइप का मीनिंग। प्रभुपाद ने बोला, इस लाइन का मतलब होता है कि एक शिष्य को अपने गुरु को की मदद करनी चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने में। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने में अपने गुरु की मदद कर रहे हैं तो हम इस लाइन का मीनिंग फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे। प्रभुपाद जानते थे किस प्रकार से हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाना है, और उनको पता था कि उनके शिष्य अभी उच्च स्तर पे नहीं है, तो उनको किस प्रकार से सेवा के द्वारा शुद्धि को प्राप्त करना है। और पर्सनली प्रभुपाद वृंदावन में थे, कंस्ट्रक्शन को देखते थे। कंस्ट्रक्शन साइट जो है, जहाँ पे अभी इस्कॉन वृंदावन मंदिर है, वहां पे ही गुरुकुल की जमीन पे प्रभुपाद की एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। प्रभुपाद के वहां पे प्रभुपाद रहते थे और वहां से ही पूरे कंस्ट्रक्शन को देखते थे। और प्रभुपाद बहुत हैवी थे, जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए। सुर भी स्वामी महाराज थे वहां पे, उनको प्रभुपाद बहुत डांटते थे, वृंदावन का कंस्ट्रक्शन कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने लेटर लिखा कि पूरा हो जाएगा, तो प्रभुपाद ने जब आके देखा तो प्रभुपाद ने बोला, वहां तो कुछ है ही नहीं। प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्यों लिखा कि ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मैंने तो लोगों को इनवाइट भी किया है। तो फाइनली वृंदावन मंदिर का कंस्ट्रक्शन फिर रामनवमी के समय हुआ, 1974 या 75 में रामनवमी के समय वृंदावन मंदिर का ओपनिंग हुआ। और प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ एक बार जा रहे थे वृंदावन में ही, तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ एक वो एक औरत को देखा जो कि राधा दामोदर मंदिर में हमेशा पानी का बर्तन लेके जाती थी भगवान के सुबह के समय अभिषेक के लिए। तो प्रभुपाद ने उसको देख के बोला, इस औरत को देख के, कि ये औरत अगले जन्म में भगवत धाम चले जाएगी। कमाल कृष्ण महाराज को बहुत अचरज हुआ ऐसा जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा। प्रभुपाद ने बोला, ये ब्रजवासी है, ब्रज में उसका जन्म हुआ है, और पूरी जिंदगी से वो राधा दामोदर के लिए जल लेके आ रही है। तो राधा दामोदर को जो पूरी जिंदगी से जल से उनका अभिषेक करने में मदद कर रही है, वो तो भगवान के वात्सल्य भाव में उनके सेवक हैं, तो वो ये शरीर खत्म करके भगवत धाम वापस चले जाएंगे। और फिर प्रभुपाद ने समझाया कि ब्रजवासी का क्या मतलब होता है, ब्रजवासी कितने कितने एग्जॉल्टेड, कितने उच्च स्थिति में होते हैं। और वृंदावन के बाद, वृंदावन में प्रभुपाद एक बार बहुत बीमार भी हुए थे, और जब प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था, फेमस लेटर लिखा था, कि मैं वृंदावन में इसलिए बीमार हूँ क्योंकि मेरे शिष्य भक्ति के नियमों का, चार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बीमार हूँ, इस तरह से प्रभुपाद ने लिखा था। और उस लेटर को देख के बहुत सारे लोग सिंसियरिटी से भक्ति का पालन करने लगे थे। जब वो लेटर प्रभुपाद ने हर मंदिर में पहुंचाया, तो वो लेटर जिस जिसको मिला उनको लगा कि वो उनके गुरु की हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह से प्रभुपाद ने लेटर लिखा था। और वहां पे वृंदावन में एक जब बहुत बड़े व्यक्ति मिलने के लिए आए, तो प्रभुपाद इतने बीमार थे कि उनकी उठने की भी हालत नहीं थी। और जब प्रभुपाद को बताया गया कि ये बड़े व्यक्ति तो प्रभुपाद मंदिर बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं, तो प्रभुपाद उतनी अवस्था में भी उनसे मिलने के लिए आए, 2-3 घंटे उनके साथ बैठ के बात किए। और ऐसा लीलामृत में आता है, जब वो उठ के गए तो प्रभुपाद इतने ज्यादा थक चुके थे कि प्रभुपाद उठ के चलने लायक भी नहीं थे। भक्त लोग उनको उठा के, प्रैक्टिकली उठा के लेके आए अंदर, प्रभुपाद इतने कमजोर थे और बहुत ज्यादा बीमार थे। तो प्रभुपाद लंबे समय तक वृंदावन में रुके उस समय। धीरे धीरे प्रभुपाद का जब हेल्थ ठीक हुआ, तब उन्होंने फिर से चलना चालू किया। और मायापुर का जो चार्ज था, प्रभुपाद प्रभुपाद ने जयपताका स्वामी महाराज को दिया था, और मायापुर में जमीन खरीदने में भी अपना एक अलग स्ट्रगल था कि इस प्रकार से प्रभुपाद के गॉड ब्रदर नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद इस्कॉन का मंदिर मायापुर में बनना चाहिए, तो लोकल लोगों से मिलके उनके गॉड ब्रदर्स बोल रहे थे कि इस्कॉन को कोई जमीन नहीं मिलना चाहिए, और वो लोग लोकल जो गांव वाले थे वो बहुत ऊंची ऊंची कीमत बता रहे थे जमीन की, तो बहुत कठिनाई हो रही थी। तो प्रभुपाद ने बोला तमाल कृष्ण को बुलाओ। तमाल कृष्ण प्रभुपाद के राइट हैंड मैन के जैसे थे, जो काम कोई नहीं कर पाता था प्रभुपाद बोलते थे तमाल को बुलाओ, तमाल करेगा। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और तमाल कृष्ण महाराज को पैसे दिए। प्रभुपाद ने सिखाया भारत में पैसे पैसे कैसे कैश को कैसे लेके जाते हैं। तमाल कृष्ण महाराज को उन्होंने एक टॉवेल के समान दिए, उस टॉवेल को कमर में बांध के उसके अंदर पैसे छुपा के ले जाने का तरीका बताया। और प्रभुपाद ने बोला जब तक जमीन वृंदावन की जब तक मायापुर की जमीन हमें नहीं मिल जाए तब तक वापस मत आना। उस समय प्रभुपाद कोलकाता में थे, ऐसा बोल के प्रभुपाद ने बोला जमीन को खरीद के ही वापस आना। तमाल कृष्ण महाराज 3-4 दिन 5 दिन तक वापस नहीं आए। तो एक दिन रात में 12 बजे प्रभुपाद अपनी बुक्स लिख रहे थे। उस रात में 12 बजे तमाल कृष्ण महाराज आए और प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया कमरे में आके, और प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद मायापुर की जमीन आपको मिल गई, और ऐसा बोल के जमीन के कागज प्रभुपाद के हाथ में दिए। प्रभुपाद भी बहुत खुश हो गए, तमाल कृष्ण महाराज को गले लगा के बोलते हैं कि अभी जाओ, अभी तुम रेस्ट करो, तुमने अपना सारा काम पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से मायापुर जमीन मिली, फिर प्रभुपाद मायापुर में रहने लगे। अभी मायापुर मंदिर का जो गेट है उस मंदिर से जस्ट अंदर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भजन कुटीर है वो प्रभुपाद की मायापुर की पहली भजन कुटीर है, वहाँ पे प्रभुपाद पर्सनली रहते थे, गौर नेताई की सेवा करते थे। और धीरे धीरे प्रभुपाद ने वहाँ पे उसी भजन कुटीर के बगल से जो रूम्स जाते हैं उस रूम्स को प्रभुपाद ने बनवाया भक्तों के रहने के लिए। चूंकि मायापुर में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी तो बरसात के समय में बहुत कठिन होता था रहना, और उनके शिष्यों को भी बहुत कठिनाई होती थी क्योंकि ये सभी तो अमेरिकन शिष्य थे, तो उन्होंने भारत में ऐसी स्थितियों में रहना सीखा नहीं था। बट प्रभुपाद के लिए धीरे धीरे उन्होंने सहन किया। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ऐसा प्रश्न करते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते, तो प्रभुपाद उनको उत्तर देते हैं क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते, अगर तुम शुद्ध होना नहीं चाहते तो ऐसी स्थिति में मत रहो, शुद्ध होने के लिए तुम्हें ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। तो तमाल कृष्ण महाराज शांत हो जाते हैं। ये बात है 1974 के लगभग। उसके बाद प्रभुपाद हैदराबाद कथा में भी जाते हैं, हैदराबाद पंडाल प्रोग्राम में भी जाते हैं, और प्रभुपाद का उस एक्चुअली बहुत सारी लीलाएं हैं इसके बीच में, क्योंकि प्रभुपाद ऑलमोस्ट 11 साल तक थे, तो 11 साल की बहुत डिटेल्ड लीलाएं हैं वो इस प्रकार। ये टॉपिक इस प्रकार के हैं कि
हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है इसी पे, यहाँ पे भूलना जयपताका स्वामी महाराज का मायापुर में कैसा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था कि उनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था, तो कैसे समझे?
जयपताका तमाल कृष्ण महाराज जीबीसी थे, जयपताका महाराज मायापुर के इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे मायापुर के, जयपताका महाराज भावानंद महाराज। तो जमीन जो थी उस समय जो जमीन थी वो तमाल कृष्ण महाराज ने मैक्सिमम खरीद के दी प्रभुपाद को, पहली जमीन। उसके बाद हरिकेश महाराज ने बहुत सारी जमीन मायापुर के लिए खरीदी और जयपताका महाराज ने जमीन खरीदी। अभी जो टोटल हमें कैंपस दिखाई देता है 700-800 एकड़ का, वो एक साथ नहीं हुआ, बहुत सारी जमीन अलग अलग ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई और उसको मंदिर से जोड़ा गया, तो कई कई साल 20-30 साल लगे। और बाकी मायापुर डेवलप करने का पूरा काम तो जयपताका महाराज ने किया, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के साथ में ट्रेवल करते थे और उनका जिम्मेदारी अलग तरीके अलग जगह पे था, वो जोनल सेक्रेटरी थे। तो जयपताका महाराज के हाथ में प्रभुपाद ने मायापुर दिया था, प्रभुपाद ने बोला भी था कि मैंने तुम्हें अभी मायापुर दिया है और तुम्हें मायापुर को डेवलप करना है। तो उस समय से लेके अभी तक जयपताका महाराज मायापुर के मेन इंचार्ज है, मायापुर का जो भी प्रोग्रेस है उनके द्वारा मैक्सिमम किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रचार, सब कुछ जयपताका महाराज ने प्लान किया शुरू से उसी समय से, तो वो वहाँ के मेन व्यक्ति हैं। तमाल कृष्ण महाराज बिगिनिंग में थे क्योंकि जमीन दिलाया था, परंतु फिर प्रभुपाद का महाराज सुनील वहां पे इंचार्ज बना दिया। प्रभुपाद एक बार भारत के बाहर जाते हैं, सिंगापुर, हवाई, इन सब जगह पे जाते हैं। तो हवाई में एक भक्त, एक शिष्य होते हैं उनके, सिद्ध स्वरूपानंद। सिद्ध स्वरूपानंद एक खुद ही एक व्यक्ति होते हैं जो प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के, उनके खुद के 50 शिष्य होते हैं, 50-100 शिष्य होते हैं। तो प्रभुपाद की पुस्तकों को वो सिखाते हैं अपने शिष्यों को और बाद में वो प्रभुपाद को समर्पण करते हैं। परंतु सिद्ध स्वरूपानंद इस्कॉन को पसंद नहीं करते थे, इस्कॉन से उनका नहीं बनता था। तो वो एक अलग स्टोरी आता है हवाई में, प्रभुपाद उनको समझाते हैं कि आप इस्कॉन के साथ क्यों नहीं रहते हैं। इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स जिन्होंने किया है वो स्टोरी उसमें आती है। वो लोग बोलते हैं प्रभुपाद हम आपको तो पसंद करते हैं परंतु जीबीसी के अंडर में नहीं रह सकते। वो सब स्टोरी सिद्ध स्वरूपानंद के साथ भी है। और भूरीजन प्रभु के समय भी उसी समय से है, क्योंकि भूरीजन प्रभु हवाई में प्रेसिडेंट थे उस समय। वो प्रभुपाद को रिसीव करने आते हैं और प्रभुपाद जब गाड़ी में बैठते हैं तो भूरीजन प्रभु और देवी शक्ति जगत तारिणी माता जी दोनों प्रभुपाद को लेके आते हैं। और प्रभुपाद गाड़ी में उनसे पूछते हैं, भूरीजन प्रभु से, कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो भूरीजन प्रभु बताते हैं प्रभुपाद अभी तो ज्यादा गेस्ट नहीं आ रहे हैं, और इस तरह से बोलना चालू करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं मैं गेस्ट का नहीं पूछ रहा हूँ, आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो भूरीजन प्रभु ने बोला प्रभुपाद एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद ने उनसे दो प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था कि आपका मंदिर इस्कॉन में है कि नहीं, और दूसरा प्रश्न था कि आप मेरे शिष्य हैं कि नहीं। भूरीजन प्रभु ऐसा लिखते हैं, ये दोनों प्रश्न ऐसे थे कि प्रभुपाद ने मुझे ये बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम करना इतना जरूरी है इस्कॉन मंदिर के लिए कि अगर कोई वो नहीं करता है तो यहाँ तक प्रभुपाद बोलने के लिए तैयार है कि वो मंदिर इस्कॉन में नहीं है या वो व्यक्ति प्रभुपाद का शिष्य नहीं है, इतना जरूरी प्रभुपाद ने बताया। ये दो प्रश्न पूछे कि आर यू माई डिसाइपल और इज योर टेम्पल इन इस्कॉन। इस तरह से दो प्रश्न पूछ के प्रभुपाद ने उनको एकदम घबरा गए भूरीजन प्रभु। उसके बाद प्रभुपाद पूरे रास्ते में एयरपोर्ट से लेके मंदिर तक जाने तक उनका पूरा उनको इतना डांटा, जब तक वो भूरीजन प्रभु लिखते हैं जब तक इस मंदिर आया था तब तक मैं थक चुका था पूरी तरह से, प्रभुपाद ने इतना डांटा मुझे। उसके बाद प्रभुपाद उनको अपने साथ रखे और उनको सिखाए कि किस प्रकार से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे मंदिर के अध्यक्ष के क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। एक पुस्तक है बहुत अच्छी, लाइफ विद द परफेक्ट मास्टर, सत्सुर दास गोस्वामी महाराज ने लिखी है। उस पुस्तक में ये लीला आती है सिद्ध स्वरूपानंद की और भूरीजन प्रभु की। धीरे धीरे सिद्ध स्वरूपानंद प्रभु अलग हो गए इस्कॉन से और वो अलग ही इस प्रकार से अपना अपना काम करने लगे। बाद में उन्होंने धोती कुर्ता पहनना भी बंद कर दिया और दाढ़ी बढ़ाने लगे। तो प्रभुपाद पसंद उनको उनसे उतने प्रिय खुश नहीं थे, परंतु वो प्रभुपाद को सम्मान करते थे परंतु इस्कॉन के साथ नहीं रह पाते थे। अभी भी सिद्ध स्वरूपानंद की संस्था जो है वो है, एक्टिव है। और हम देखते हैं, आपने अमेरिका में एक हिंदू लेडी है तुलसी गैबार्ड, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी चुनी गई थी। तुलसी गैबार्ड आप लोग जानते होंगे, उन्हें हिंदू धर्म के ऊपर बोला भी है, फेसबुक यूट्यूब में उनका वीडियो है। तो तुलसी गैबार्ड एक्चुअली सिद्ध स्वरूपानंद के उसमें से है, उनका जो ग्रुप था और प्रभुपाद से ही कनेक्टेड है, इसलिए तुलसी गैबार्ड प्रभुपाद को मानते भी है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को भी मानते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन प्रभुपाद से है। तो उसके बाद प्रभुपाद के एक शिष्य थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनको भुवनेश्वर में जमीन मिली, उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया। प्रभुपाद भुवनेश्वर में भी कुछ समय तक रहे और 1974 में प्रभुपाद जी अहमदाबाद भी आते हैं, जसुमती नंदन प्रभु उनको अहमदाबाद में इनवाइट करते हैं 75। और अहमदाबाद में प्रभुपाद के प्रोग्राम्स भी होते हैं। उस समय इस्कॉन का लैंड तो नहीं होता है, बट प्रभुपाद जी एक जगह पर रुकते हैं और एक लैंड की बात चलती रहती है, जो लैंड अभी हम कठवाड़ा में देखते हैं उस लैंड की बात प्रभुपाद के समय में चलती है। प्रभुपाद का एक लेटर जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हमें लैंड की आवश्यकता है, उस ट्रस्टी का नाम भी लिखा रहता है। उस लैंड पे ही अभी कठवाड़ा मंदिर है और गौशाला है, वो लैंड उस समय की दी हुई है। तो मंदिर उस समय तक नहीं बना था, बट प्रचार के लिए प्रभुपाद ने जसुमती नंदन प्रभु को अहमदाबाद में भेजा था। अहमदाबाद से प्रभुपाद जी मुंबई जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे 1976-77 में प्रभुपाद के देह त्याग के जो समय है, प्रभुपाद ऋषिकेश में जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। और ऋषिकेश से फिर ऋषिकेश में प्रभुपाद अपने शिष्य को बताते हैं कि मेरा शरीर त्यागने का समय हो गया है। और जब शिष्य में भक्तिचार्य स्वामी महाराज और कमाल कृष्ण महाराज को ये बात पता चलती है तो कि प्रभुपाद वृंदावन जाना चाहते हैं, तो वो लोग प्रभुपाद को लेके दे आते हैं, दिल्ली से वृंदावन आते हैं। वृंदावन में प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं कि मैं शरीर त्याग करने के लिए आया। जब सभी लोग रोने लगते हैं तो प्रभुपाद समझाते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर तो नश्वर है। इस प्रकार से प्रभुपाद उन सभी को समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सिद्धांत इस प्रकार से है, इसलिए आत्मा हमेशा रहती है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। और तब प्रभुपाद के कुछ कुछ सीनियर शिष्य पूरी दुनिया से आते हैं और प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तो भगवान आपको नहीं ले जाएंगे, तो आप कृपा करके रुक जाइए। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि ठीक है, रुक जा। प्रभुपाद ने पहले भोजन लेना बंद कर दिया था पर फिर से भोजन लेना स्वीकार करते हैं। पर प्रभुपाद एक्चुअली इतने दिव्य थे कि जैसे ही वो उनकी हेल्थ सही होती है तो फिर से वो प्रचार करना लंदन फिर से चले जाते हैं। सबके रोकने के बाद भी लंदन चले जाते हैं, डॉक्टर मना करता है, उसके बाद भी प्रभुपाद लंदन चले जाते हैं। और जब प्रभुपाद लंदन जाते हैं तो लंदन उनकी हालत, उनकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है। तो जब वो वापस लौटते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी इस शरीर में कुछ नहीं बचा है, अभी ये शरीर केवल हड्डी का एक ढांचा के समान है, तो अभी इसको ज्यादा बचाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद और भोजन ये सब लेना बंद कर देते हैं। पर प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन की खबर जब भी उनको मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मुझे जीवन प्रदान करता है। एक बार एक घनश्याम प्रभु की बुक डिस्ट्रीब्यूशन की खबर प्रभुपाद के पास आती है, तो घनश्याम प्रभु जो कि रसिया में भक्ति तीर्थ महाराज उनका नाम है, अभी उस समय उनका दीक्षा नहीं हुआ था, तो प्रभुपाद उनकी न्यूज सुनते हैं कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि उस समय धर्म का प्रचार वहां पे बंद था, निषेध था, और वो अंदर घुस के बुक्स को स्मगलिंग करके वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो उनकी जो लेटर्स आते थे वो प्रभुपाद बहुत सुनते थे, बहुत अच्छे से सुनते थे। और उनको प्रभुपाद ने फाइनली आशीर्वाद भी दिया था कि आप अपनी इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, इस जन्म में आप भगवान का दर्शन करेंगे। प्रभुपाद ने उनको ये आशीर्वाद दिया था इस तरह से। और फिर इवेंचुअली जब प्रभुपाद लखनऊ से लौटते हैं उसके बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने प्रभुपाद वृंदावन में निवास करते हैं और शिष्यों को गाइड करते हैं। कुछ कुछ शिष्य आके उनसे पूछते हैं कि प्रभुपाद आपके एब्सेंस में दीक्षा कैसे देंगे, गुरु कैसे बनाएंगे, तो प्रभुपाद बताते हैं कि आप लोग जो जो सन्यासी हैं वो बाद में गुरु बन सकते हैं, और चूंकि गुरु की उपस्थिति में दीक्षा नहीं दी जाती है इसलिए बाद में आप रेगुलर गुरु के जैसा कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद की अंत्य लीला बहुत सारी है, एक्चुअली बहुत सारी डिटेल है उसमें, हर दिन के बहुत सारी डिटेल है। और एक्चुअली 14 नवंबर 1977 मॉर्निंग के समय से ही डॉक्टर, एक वैद्य एक डॉक्टर आते हैं, वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी अभी 14 घंटे में शायद शरीर छोड़ देंगे। सुबह 5 बजे ये न्यूज आती है, तो प्रभुपाद के सारे शिष्य जितने भी भारत में रहते हैं, जितने लोग भी आ पाते हैं, सारे शिष्य आने लगते हैं प्रभुपाद से, प्रभुपाद के दर्शन के लिए। और प्रभुपाद को रात अपने कृष्ण बलराम मंदिर के कॉरिडोर में रखा जाता है जिससे जो भी आए उनका दर्शन कर सके। और फिर उसी दिन शाम को 7:23, 7:25 प्रभुपाद अपना देह त्याग करते हैं। और जगन्नाथ दास नहीं, कृष्णदास बाबा जी को महाराज बताते हैं, उन्होंने देखा रहता है कि प्रभुपाद जब एकदम मृत्यु के पास रहते हैं उस समय भी उनकी जीभ लगातार चलती रहती है, वाइब्रेट करती है, तो बताते हैं कि देखो अभी भी ये भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद का इतना ज्यादा अटैचमेंट था भगवान के नाम से, उस अवस्था में भी भगवान का नाम लगातार उनका चल रहा था। तो जब ये न्यूज आती है प्रभुपाद के देह त्याग करने की, तो रात का समय होने वाला होता है, तो वृंदावन के मंदिरों के जो अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं शिष्यों से कि हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर के विग्रह प्रभुपाद का दर्शन करें। तो रात में फिर प्रभुपाद को समाज दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद को वृंदावन के 7ों मंदिरों में ले जाते हैं, भगवान का दर्शन प्रभुपाद करते हैं, फिर वापस लौट के प्रभुपाद का समाधि होता है। और चूंकि प्रभुपाद को गोवर्धन या गोवर्धन परिक्रमा की बहुत ज्यादा इच्छा थी, तो बाद में प्रभुपाद के एक विग्रह बनाते हैं छोटा विग्रह और उसको गोवर्धन परिक्रमा के लिए उनके शिष्य लेकर जाते हैं। और इवेंचुअली 1979 में प्रभुपाद की जो समाधि मंदिर है वो बना के प्रभुपाद को ऑफर किया जाता है, और पुष्प समाधि बाद में मायापुर इस्कॉन मायापुर मंदिर में बनाई जाती है। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद का इस धरा धाम इस धरती पे उनके जो प्रकट लीला है वो खत्म होती है। प्रभुपाद हालांकि इस संसार में हमेशा उपस्थित हैं उनकी शिक्षाओं के द्वारा, अभी भी प्रभुपाद की शिक्षाओं के द्वारा इस्कॉन संस्था आगे बढ़ रही है। प्रभुपाद की शिक्षाएं, प्रभुपाद का एग्जाम्पल इस्कॉन के लिए एक बैकबोन के समान है, उसके बिना इस्कॉन संस्था का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वास्तविकता में प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के मेन व्यक्ति हैं जिनके कारण इस्कॉन चल रहा है। और जितना लिमिट तक हम, जितनी डिग्री तक हम प्रभुपाद को फॉलो कर सकते हैं इस्कॉन के अंदर, उतनी डिग्री तक हम इस्कॉन को अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं इस संसार में। जैसे ही प्रभुपाद हमारी संस्था के केंद्र बिंदु से हट जाएंगे उसी समय संस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए इस्कॉन भक्तों की जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद के द्वारा दिए गए सिद्धांत, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स, इन सभी को हम पालन करने का प्रयास करें, जिससे कि हम प्रभुपाद का जो ड्रीम था कि हर गांव में हर गली में कृष्ण भक्ति को पहुंचाया जाए, वो हम इस्कॉन के थ्रू उस प्रभुपाद के सपने को पूरा कर सकें। ओके, तो इस तरह से ऑफिशियली ये कंप्लीट होता है। हालांकि बहुत सारी लीलाएं बची हुई भी हैं, तो इवेंचुअली जब भी मुझे लीलाएं याद आती रहेंगी तो हम बीच बीच में ये सेशन कर सकते हैं। प्रभुपाद कथाएं तो बहुत सारी हैं, बीच बीच में जब भी मैं कंपाइल करूंगा तो हम ये सेशन इस प्रकार से कर सकते हैं प्रभुपाद की कुछ लीलाओं का। और नेक्स्ट संडे से हम अपना रेगुलर भागवत प्रवेश चालू करेंगे, जो भी हमारा चल रहा था वो हम नेक्स्ट संडे से प्रारंभ करेंगे इसी टाइम पे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एंड करते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ दिव्यमान, हाँ बताओ अभी क्या प्रश्न है।
सर जैसे प्रभुपाद ने सबको हरि नाम की दीक्षा दी, हाँ, वैसे दीक्षा कैसे दे किसी को,
दीक्षा कैसे दें किसी को?
हाँ जी,
लोगों को हरि नाम दीजिए, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाइए, जो भी आपको मिलता है उसको बताइए कृष्ण भक्ति कितनी अच्छी वस्तु है, और उनको बोलिए कि आप भी भगवान का नाम लीजिए। इस तरह से करेंगे तो सभी को आप कृष्ण भक्ति फैला सकते हैं, कृष्ण भक्ति पहुंचा सकते हैं सभी के पास तक।
सर मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, जो श्रीमद् भागवतम का, गीता का, हाँ, ताकि किसी को भी जवाब दे सकूं।
हाँ बहुत अच्छा है, भागवत और गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा।
सर मैंने एक बात पढ़ी, जमराज जी कहते हैं मैं सबको दंड दे सकता हूँ लेकिन वैष्णवों को नहीं दे सकता।
हाँ यमराज ने जो बोला है कि मैं सबको दंड दे सकता हूँ वैष्णवों को नहीं दे सकता, क्योंकि यमराज खुद भी वैष्णव है इसलिए वैष्णवों को दंड नहीं दे सकता। अच्छा एक प्रश्न आया है कि उस गृहस्थ प्रभु जी का नाम क्या था जो बाद में ज्वाइन किए और सन्यासी बन गए, जो अभी बहुत फेमस हैं, जिनके घर में चार सन्यासी रात में रुके थे। जहां तक मुझे पता है उन सन्यासी का नाम है इंद्रदुम्न स्वामी, वो व्यक्ति इंद्रदुम्न स्वामी है के नाम से हैं अभी, प्रभुपाद जी के बहुत पुराने सीनियर शिष्य हैं, और वही वो गृहस्थ थे जिनके घर में वो सन्यासी रुके हुए थे। मैंने इस प्रकार से सुना है, तो मेरी नॉलेज के आधार पर इंद्रदुम्न महाराज हैं वो, आपने भी उनका नाम सुना होगा शायद, बहुत फेमस है उनके फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ इंडिया बहुत फेमस है इंद्रदुम्न महाराज का। ओके जगत गुरु से लेकर